તારીખ 14/10/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 182 અને 83 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 1.
મિત્રા સર્વમપી સ્વલક્ષણ બલાશ્ય भावार्थ के इस प्रकार है कि जिसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है वह जीव ऐसा परिणाम वह जीव को ऐसा परिणाम संस्कार होता है। क्या कि जिस जीव को अपना मूल स्वरूप का अनुभव होता है उसके परिणाम कैसे चलते हैं, इसका परिणमन कैसा होता है, यानी परिणमन में किस प्रकार के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण से ये परिणमन स्वतः ही ऐसा चलता है, इसका विचार करेंगे। अहम शुद्ध चित्त अस्मि एव ऐसा संस्कार होता है, परिणाम को संस्कारित किया जाता है अनुभव के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है, बालक आता है, तो बालक हम जैनी है तो हमारे खाने पीने के रहने के जो भी पद्धति है वो जैन खुद के अनुकूल होती है, तो उसको ऐसा संस्कारित हो जाता है, बच्चा ऐसा संस्कारित हो जाता है। तो कहीं भी रहेगा तो ऐसे अन्य चीज को खाएगा नहीं, इसमें क्या है, भक्षा भक्ष का विवेक करेगा, कहीं भी जाएगा तो भक्षा भक्ष का विवेक करेगा कि नहीं करेगा, इसका क्या कारण है। तो उसमें उसके पूर्व के भी एक संस्कार है, तो संस्कारित हुआ बालक है, ऐसे जीव को अनुभव होता है, अपना परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है, अपना मूल स्वरूप का अनुभव होता है, तो उसके परिणाम संस्कारित हो जाते हैं। संस्कारित हो जाते हैं माने क्या, कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं ऐसा संस्कारित हो जाता है। जैसे बालक को क्या हुआ कि मैं तो जैनी हूं, इसलिए अजैन लोग के जो खाने पीने है और हमारे लोग के खाने पीने है उसमें अंतर है, हम केमिकल नहीं खाएंगे, हम दूसरे अभक्ष कोई चीज नहीं खाएंगे। तो यह अनुभव जिसको हुआ उसके परिणाम कैसे संस्कारित हुआ, तो उसके परिणाम ऐसे परिणमन करने लगे कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र हूं, मैं कोई देहादि स्वरूप नहीं हूं, क्या जबकि संसार के लोग इस तरह से चलते हैं कि हम तो फलाड़े हैं, लिहाज इसको जैसे है वैसे, किसान में दिखता है वैसा अपने को माना है, मोटा है तो मोटा, पतला है तो पतला, गोरा है तो गोरा, काला है तो काला, और पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, ऐसा माना है। ये संसार के संस्कार थे, ये कर्म जनित उदय जो है, उदय के पर्याय है मनुष्यपना में, जितना मनुष्य के लायक जो भी परिस्थिति है तो पूर्व कर्म प्रारब्ध कर्म के अधीन है। तो संस्कार भी ऐसे थे कि हम फलाने हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं, ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो बदल जाते हैं, जितना भी स्वीकार किया है वो बदल जाते हैं। एक नया नए अनुभव होने के बाद जीव के परिणाम में नया संस्कार हो जाता है, नया संस्कार से वो अनुभव में से संस्कारित हो जाता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र में हूँ। इस प्रकार से इसका परिणाम जो है वो पूरा पूरा बदल जाता है। तो ऐसा बराबर समझता है कि बाहर में संसार के लोग मुझे दूसरी तरह से पहचानते हैं, जिस ढंग से जिस प्रकार से ये लोग मुझे पहचानते हैं, वास्तव में मैं ऐसा नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। मुझे जिस नाम से पुकारते हैं, जिस संबंध से पुकारते हैं, बेटा है वो पिताजी कहेगा, तो पिताजी है वो बेटा कहेगा, अलग अलग जितने जिसका संबंध है उस तरह से वो व्यवहार करेगा। तो जो भी जिस प्रकार का जिसके साथ संबंध है और जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो उसको मालूम है कि एक संसार के नाटक के परिस्थिति ऐसी होती है, वास्तव में मैं ऐसा, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा संस्कार हो जाता है। ऐसा परिणाम में इस संस्कार से परिणाम चलता रहता है, तो अंदर में कुछ बाहर में कुछ। तो गुरुदा ऐसे क्षुल्लक ने दृष्टांत किया है संज्ञान दीपिका में, हाथी के बाहर के दांत दूसरे होते हैं जो शोभा के होते हैं, वहां पर सोने की कुंडली लगाई जाती है, पर अंदर के चबाने के दांत अलग होते हैं खाने के लिए। जैसे ज्ञानी के अंदर की मान्यता, अंदर का कॉन्सेप्ट अलग है, तो मूल स्वरूप से अपने को जानता है, अनुभव करता है, तो बाहर में जो व्यवहार है वो व्यवहार को व्यवहारिक तौर से निभा लेता है। तो चलो हमारा प्रारब्ध ऐसा है मान का, तो उसको अपने आप खत्म कर होने दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा अपने समय। सर्वप्रथम अपने मूल स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। पहचान होने से हमारे भीतर में जो अनंत सुख भरा है उसका एक अट्रैक्शन बन जाएगा, हमारे परिणाम का खिंचाव हमारे सुख धाम की ओर चलेगा और हम ज्ञानी बन जाएंगे। तो ऐसा संस्कार हो जाएगा तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। पहले पहचान करें, पहचान करने के लिए हमारे परिणाम का परिचय करें, परिचय करने के लिए ऐसी भावना में आए हमें ये काम करना ही है, जैसे कैसे भी करना ही है। यहाँ तो ज्ञानी की बात चली है, मोक्ष अधिकार है ना, इसलिए ऐसा कहा कि जिसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है वो जीव ऐसा परिणाम संस्कार होता है, वो जीव को ऐसा परिणाम संस्कार होता है कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, निश्चय से ऐसा ही हूँ, एक क्या खरेखर वास्तविक रूप से मैं ऐसा हूँ। इस प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया जाता है, वास्तव में खरेखर मैं वैसा अभिनेता करता है, अभिनय करता है, अभिनेता अभिनय करता है, तो वो स्टेज पर उसका भिखारी का स्वांग होता है, तो स्वांग में वो भीख भी मांगता है, उतना दर्द से आवाज निकालता है, अरे एक रोटी का टुकड़ा मेरे मेनू में, भूखा हूँ मैं, भूखा मरता हूँ, भूखा मर गया हूँ, ऐसा बोलेगा कि दूसरे को दर्द पैदा हो जाएगा, सुनने वाले को, अभिनय देखने वाले को। लेकिन उनको मालूम है कि मेरी 15 लाख की गाड़ी गेट पर खड़ी है, ये तो मेकअप किया है। ये जो नाटक का जो अभिनय पूरा करके ड्रेस चेंज करके तो गाड़ी में मुझे जाना है, उसको भूल नहीं गया है, तो स्मरण करने की उसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भान वर्तता है, मैं जो हूँ सो हूँ उसका भान उसको वर्तता है। ऐसे ज्ञानी को अपना शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप का भान वर्तता है। संसार में व्यवहार को संसारी होकर करेगा, उसको कहते हैं कि अटपटी दशा में ज्ञानी वर्तते हैं। ऐसी बाहर की दशा देख करके जगत भूले तो उसमें कोई नई बात नहीं है, और इसलिए जगत भूला हुआ है, ज्ञानी को पहचानने में जगत भूला हुआ है। जगत भूला हुआ है क्या? हम ही अनंत काल अनंत बार उससे ऐसे भूल करके बैठे हैं, हमने भी यही भूल बार बार किया है, यही बार किया है। ज्ञानी को पहचानो या मुनि को पहचानो या सर्वज्ञ को पहचानो, पहचानने का एक ही मुद्दा होता है, वो की अवेलेबिलिटी कम है। मुनि और सर्वज्ञ है उपलब्ध नहीं होते, वैसे सस्ते नहीं है वो, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि ज्ञानी इसके बराबरी में अधिक संख्या में हो सकते हैं, और वो संसार में पाए जाते हैं, नगर आदि में पाए जाते हैं, जबकि दुनिया और सर्वज्ञ को जंगल में ही मिलेंगे, क्योंकि नगर में मिलेंगे शहर में नहीं मिलेंगे। तो जो पहचान करने का मुद्दा है वो पूर्ण तीनों में एक है, कि अगर सम्यक्त्व के रूप में पहचाना जाए, सर्वज्ञ को भी सर्वज्ञ के रूप में पहचाना जाए, तो इसका फल बहुत बड़ा है, मतलब इसका फल निर्माण पर है। और अगर नहीं पहचाना तो सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहकर के जो भक्ति किया, पूजा किया, इसका पारमार्थिक कोई फल नहीं है। सांसारिक फल पुण्य बंदा नहीं हो सकता है, पारमार्थिक फल इसका कोई नहीं है, चाहे कितनी भी पूजा भक्ति करें। पत्रांक नंबर 507 है, गंभीर बातें कहीं कहीं गए करती है। ये इतने गूढ़ पत्र है कि सामान्य मनुष्य पढ़ने पर इसको क्या कहना चाहते हुए समझ में नहीं आएगा, ऐसी भाषा भी दूर है, विषय भी इतना गूढ़ है। किसी प्रकट कारण का अवलंबन लेकर किसी प्रकट कारण का अवलंबन लेकर विचार कर परोक्ष चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुष को मात्र संयम दृष्टि रूप से भी पहचान लिया जाए तो उसका महान फल है। तो क्या कहते हैं, किसी प्रकट कारण का अवलंबन लेकर विचार कर, तो प्रकट कारण क्या है, शास्त्रादि है या जीव प्रतिमा है, स्वरूप की पहचान करने का प्रकट कारण है सर्वज्ञ प्रतिमा है। और सर्वज्ञ की प्रतिमा के विषय का जो प्रकरण चला हो ऐसा शास्त्र ऐसा विचार कर अवलंबन लेकर उसका अवलंबन लेकर प्रतिमा देता उसका विचार करके परोक्ष चले आते हुए भूतकाल में हो गए कि महावीर भगवान की प्रतिमा भगवान महावीर भूतकाल में हो गए परोक्ष हो गए ऐसे सर्वज्ञ पुरुष को मात्र सम्यक दृष्टि रूप से भी पहचान लिया जाए। सर्वज्ञ के रूप में पहचानना तो बहुत कठिन बात है, ये तो बहुत नजर चाहिए इसके लिए, तो ये मामूली बात नहीं है। सर्वज्ञ की दशा को पहचानना ये तो ज्ञान दशा में ना संभव नहीं है, मुमुक्षु दशा में वो संभव नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि के रूप से भी पहचान लिया जाए तो उसका महान फल है, उसका सम्यक्त्व पहचाना जाए। क्या सर्वज्ञ का सम्यक्त्व, ज्ञानी का सम्यक्त्व और मुनि का सम्यक्त्व, सम्यक्त्व तीनों का एक होता है और पहचानने का मुद्दा वही है। क्यों कि मुनि दशा का अंदाज नहीं आ सकता, सर्वज्ञ दशा का अंदाज नहीं आ सकता, अचिंत्य दशा है वो तो ज्ञान दशा के बाद में पहचान में आता, लेकिन मुमुक्षु को सम्यक्त्व अगर पहचानने में आता है तो ज्ञानी से मुनि से या सर्वज्ञ से तो उसका फल क्या है कि निर्वाण फल है, वो ज्ञान बन जाएगा उसका निर्वाण हो जाएगा। और यदि वैसे न हो तो सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहने का कोई आत्मा संबंधी फल नहीं है, संसार संबंधी फल हो सकता है, आत्मा संबंधी फल नहीं है, ऐसा अनुभव में आता है ये हमारा अनुभव बोलता है ऐसा कहता है, ये बात अपने कोई कहीं से सीखी हुई नहीं है, हमारा अनुभव के बात करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि प्रत्यक्ष सर्वज्ञ पुरुष को भी समोसरण में विराजमान है और हमारी भी उपस्थिति समोसरण में है। मानो यदि किसी कारण से विचार से और अवलंबन से सम्यक दृष्टि रूप से भी न जाना हो तो सर्वज्ञ के रूप में जाना तो बहुत कठिन बात है, सम्यक दृष्टि रूप से भी न जाना हो तो उसका आत्म प्रत्यय फल नहीं है। इसलिए अनंत बैर हम सुबह शरण में गए हैं और वैसे के वैसे वापिस आए हैं, कुछ फिर नहीं हुआ, पहचान नहीं हुई, परमार्थ से उसकी सेवा असेवा पूजा करो या नहीं करो, जीव को कोई जाति भेद नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूजा करे चाहे पूजा नहीं करे, अगर पहचान नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति जाति का परिणाम की जाति नहीं बदलेगी, थोड़ा फूल बन देगा वो अलग बात है, उसका कोई मूल्य नहीं है मोक्ष मार्ग में, पुण्य का कोई मूल्य मोक्ष मार्ग में नहीं है, न पुण्य का मूल्य है न पुण्य के फल का, न पाप के फल का भी मूल्य है। क्यों कि जिसको परमार्थ मार्ग में जाना है वो दोनों को ओवरटेक करके जाता है, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए उसे कुछ सफल कारण रूप से ज्ञानी पुरुष ने स्वीकार नहीं किया है, तो पूजा भक्ति करता है बहुत करता है मानो, फिर भी कुछ सफल कारण रूप से ज्ञानी पुरुष ने उसका स्वीकार नहीं किया कि इसको कोई सफलता होगी ऐसा स्वीकार नहीं किया है, ऐसा मालूम होता है।
सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से स्वीकार करने की बात इन्होंने कही। सम्यक दृष्टि यानी क्या?
ज्ञानी पुरुष,
सामने वाला ज्ञानी पुरुष, पहचानने वाला,
वो भी सेवा करता है बिना पहचान। तो ज्ञानी पुरुष जानता है कि उसका कोई सफलता, उसकी कोई सफलता नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। वो ज्ञानी का अभिमत है, और ये जो मत है वो यथार्थ है। ज्ञानी का जो अभिप्राय है वो यथार्थ है, इसका फल उसको आपको प्रत्येक कुछ नहीं आएगा, कोई सफलता नहीं है।
जो पहचान करने वाला है वह सम्यक दृष्टि तो नहीं है।
नहीं है
तो
वो पहचान करेगा उत्कृष्ट मनुष्य की योग्यता में आकर के, तो सम्यक दृष्टि होकर के निर्माण तत्व हो जाएगा। बाद में उसको सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान होगा तो निर्माण तत्व का अधिकारी हो गया। पहचानने से निर्माण तत्व का अधिकारी जब पैसा ना कर हुआ, भले ही मुमुक्ष हुए तो भी, तो हम ज्ञानी नहीं है। क्या बार बार प्रश्न क्या आता है, हम तो ज्ञानी नहीं है लेकिन हम मुमुक्ष है तो हम क्या करें। लेकिन मुमुक्ष है सही है, खराब मुमुक्ष है, मुमुक्ष के योग्य योग्यता है तो हम पहचानेंगे, तो मोक्ष का निर्माण करके अधिकारी बन जाएंगे। ज्ञानी होने की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि निर्वाण पद का अधिकारी हो जाएंगे, तो ज्ञानी होने की तो चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन मुमुक्षु है तो मुमुक्षु खरा मुमुक्षु तो बने। रूपानंद लिखते हैं, एक बार भी सच्ची मुमुक्षुता आई, खरी मुमुक्षुता आई तो उसका भोग रोग लेने वाला नहीं, क्योंकि खोटी हमें दोबारा आई है, हमको चेक करना है कि खड़ी है या खोटी। बस बाकी जो रास्ता है वो साफ है, खरी मुमुक्षुता वाले को कोई आपत्ति नहीं और खोटी मुमुक्षुता वाला तो कोई बिगड़ा आने वाला नहीं, ये बात साफ है।
जो
तत्व की बात प्रसन्न चित्त से मैंने उसने बैंक का मसला लुक लिया था, अंतर की लगने से वो खड़े गुरु को
कोई
रुचि है, उसके रुचि के सिवा दूसरा विषय कोई पुसाता नहीं है। पुसाता है उसको रुचि नहीं है, रुचि है उसको पुसाता। अपने को चेक करना है कि दूसरे दूसरी बातें हमें पुसाती है नहीं पुसाती है। चैतन्य मात्र हूं, निश्चय से ऐसा ही हूं, निश्चय से ऐसा ही हूं, वास्तव में ऐसा ही हूं। और कैसा हूं कि चिन्मुद्रा अंकित निर्विभाग महिमा, चेतना गुण उसके द्वारा चिन्हित कर दी है, ऐसी है वेद से रही बड़ाई जिसकी है, ऐसा हो ऐसा हूं मैं कि चैतन्य चिन्ह से निर्भेद महिमा, वेद रहित महिमा जिसकी है ऐसा मैं हूं। कि महिमा दो प्रकार की होती है, वेद से भी होती है और अभेद से भी होती है। जब तक भेद से महिमा होती है तब तक ये महिमा अपरिपक्व अवस्था में है, और जब निर्भेद अभेद महिमा होती है तो ये महिमा परिपक्व होती है। इसका दृष्टांत है, कि एक चीज का हम बखान करते हैं तो ये चीज बहुत अच्छी है, वो मिठाई मिठाई बनाते ना मसाला मसाला डाल के, मान लो सौराष्ट्र में कहते हैं गांधी रहते गोपीपुर के वृद्धि, इसको वो डाला है वो डाला है वो डाला है, मेवा मसाला बहुत डालते ना, और रूम में आते पानी पानी हो जाए, क्या दबाना नहीं पड़े, रूम में आते ही पानी पानी हो जाए, इसका पानी पानी हो जाए, आत्मा का भी पानी पानी हो जाए, जीव का भी पानी पानी हो जाता है, इतना इतनी अच्छी मिठाई इतनी अच्छी, तो उसका उसमें केसर उतना डाला है, घी एक किलो आटा में 4 किलो आटा तो घी पिला दिया है, बार बार शिकायत करते फिर तो परमाणु गल जाएंगे ना, पानी पानी हो जाएंगे, ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उतना तो पिस्ता नाका डाला है, उतना तो वो डाला है, उतना तो वो डाला है, कई प्रकार से, तो जहाँ तक उसके भेद की महिमा करता है वहां तक वो कच्चा है, जब वो खाता है और आनंद आता है तब पक्का है, उस वक्त भेद नहीं उठता है, तो विकल्प नहीं उठता कि क्या डाला क्या नहीं डाला, तो ये मिठाई तो 500 रुपये किलो है आज तक, कितनी 1 किलो का 500 रुपया लगता है, तो वो बात भूल जाता है, वो जब उसको खाने में आनंद आता है तो निर्विभाग महिमा हो जाती है उसको, बस खाते रहो बेटा, दूसरा विकल्प बीच में करे तो उसको आधा आता है, वो बात मतलब खाते रहो, निर्विकल्प महिमा जिसको कहते निर्विभाग महिमा माने निर्विकल्प महिमा, कैसे कोई अलंकार पहनते हैं कपड़े ऐसे मूल्यवान करते हैं, तो खरीदते हैं सबको पंचायत तो सब करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसा मजबूत है, कितना कॉस्टली है, किस चीज से बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, ये सब बात आएंगे, और फिर जब पहनने से आनंद आता है तो उस वक्त तो विकल्प उठाएगा तो आनंद उसका चला जाएगा, तो निर्विभाग महिमा अभेद महिमा निर्विकल्प महिमा, ऐसे अनुभव होता है तो उसकी निर्विभाग महिमा होती है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरे में अनंत सुख है, मेरे में अनंत ज्ञान है, ऐसा भेद उठाने की कोई जरूरत जहाँ तक ऐसा महिमा के काल में वेद विकल्प उठता है वहां तक वो महिमा कच्ची है पक्की नहीं, जब सच्ची महिमा आती है परिपक्व महिमा आती है तो स्वरूप की लीनता में डूब जाता है, लीन हो जाता है, महिमा में लीनता आ जाती है, महिमा में लीन हो जाता है, तो वो खड़ी महिमा हो वो महिमा की बात करते हैं,
किसी को सच्ची अनुभूति कहते हैं,
किसी को सच्ची अनुभूति कहते हैं, निर्विकल्प चेतना को उसके द्वारा चिन्हित कर दिए ऐसी है भेद से रहित बड़ाई बड़ाई मैंने महिमा जिसकी पैसा हो ज्ञान में अनंत चेतना स्वरूप से महिमावंत हो और उसमें कोई मुझे विकल्प मेरे महिमा में मेरा विकल्प ले सकता मेरे महिमा में डूबा हुआ कैसा मैं हूँ, यह प्रश्न उठेगा जब ज्ञान शास्त्र लिखते हैं आचार्य गुरु भी शास्त्र लिखते हैं वो तो गुरु का भेद डाल कर चैतन्य गुरु से चिन्हित तो चैतन्य गुरु का भेद डाला कि नहीं डाला, क्योंकि ज्ञान में अभेद है महिमा है अनुभव में अभेद महिमा है विकल्प में और भाषा में उसका भेद था वो भी पूछा था नहीं ऐसा जाने जैसे वेद से ज्ञान ही समझाते हो, लेकिन इसके ज्ञान में अवेद स्वरूप रहता है और वेद की महिमा रहती है, समझाते हो, वेद से समझाते हो। ऐसे सही समझने वाले को सुबह बड़े नहीं सकते, ज्ञान में आना चाहिए अवेद। क्यों? क्योंकि कहने वाले का यही प्रकार है, सुनने वाले का यही प्रकार होना जरूरी है। यानी वेद से जब आत्म स्वरूप को समझाते हैं कि आत्मा अनंत रूप में मंडित है, मूल स्वरूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अनंत विद्या से भरा है, तब फिर ज्ञानी के ज्ञान में अवैध स्वरूप है। आया पंद्रह में कहा था, पंद्रह का तो नहीं कहा, जैसे बात किया है। अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ऐसे पांच भाव रूप आत्मा की, पांच भाव का एक रूप आत्मा की अनुभूति है, वो निश्चय से समस्त जनता की अनुभूति है। तो पांच का नाम या पांच भेद, लेकिन आत्मा भेद है। तो पांच भेद कहते वक्त आचार्य श्री को अभेद का ज्ञान होता है, उसमें भाव को
जिन वेदों को गौण करके अवेद दृष्टि करने को कहा, ये वेद तो उन वेदों के साथ तो स्वामी संबंध है,
वो तो हो,
वो तो हो,
क्या आपत्ति है, सारी दुनिया पड़ी है, हमें क्या आपत्ति है, वेद कल करने की क्या जरूरत है। जैसे अंदर में वेद पड़ा है वैसे बाहर में भी सारी दुनिया पड़ी है।
बाहर की बात तो संयोगी चीज है, लेकिन अंतरंग में
उत्तर क्या है,
दर्शन ज्ञान साहित्य के जो भेद हैं, उन भेद हुए भेद तो उनके साथ स्व स्वामी संबंध है।
आप में क्या था कहते हैं, क्या मैं समझता हूँ, आप लोग प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। नायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से जो अशुद्धता होती है अवस्था में, वो तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। तो समीक्षा में लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ, मेरे घर की बात नहीं है। उस ज्ञानित आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य को, मुमुक्ष को, धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथा तो नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से उद्देश्य किया है कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र है, किंतु परवाद से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी जाता है, इसलिए एक रूप किंचित एक वेद मिले हुए आश्वाद रूप वेद एक स्वभाव वस्तु का अनुभव करने वाले पंडित पुरुष के न तो दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र ही है, किंतु वह तो एकमात्र शुद्ध नायक ही है। क्या करने का बात रखा
तो
जो नहीं समझता है क्या निकटवर्ती तो है लेकिन पूरा समझता नहीं है उसको कहते कि ज्ञानी के दृष्टि में अंधकार है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ऐसा भेद देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव करो अभेद का अनुभव करो भेद के अनुभव को छोड़ो उससे विकल्प होगा और वस्तु का सुख शांति का आस्वाद नहीं आएगा प्रयोजन की स्थिति नहीं होगी। सब बातें बड़ी
है धर्म को छोड़ो धर्म को पकड़ो।
हाँ धर्म को छोड़ करके
धर्मी
को पकड़ो पर यही साधना का वास्तविक प्रकार है साधना का यही वास्तविक प्रकार जैसे एक दूसरा दृष्टांत दे लें घर में माँ अपने बेटे को खाना खिला रही है बढ़िया से बढ़िया उसके जो तीन बातें बनाई है अच्छी से अच्छी बनाई है उनको भी खाने में अच्छा लग रहा है उसमें इसका कोई दूसरा मित्र आता है तो उसको बातें कराता है जब तो यहाँ खेलने को जाना है वो लोग आएंगे उसके मित्र आएंगे पर खाने की चर्चा चल रही हो उसको माँ क्या कहेगी उसका रस खेलने में भी है और खाने में भी है उसकी माँ ये बोलेगी कि मेरे बेटे को अभी बात मत कराओ उसको खाने दो तो खाने तो क्या महंगा है उसका हाथ थोड़ा पकड़ता हूँ मुंह थोड़ा पकड़ता हूँ तो ऐसा नहीं तुम बातें मत कराओ उसको क्या तुम उसको बातें मत कराओ उसके खाने में जो मजा आती है तो टूट जाती है तेरी बातों से रस भंग होता है पर ये पोसाता नहीं है। ऐसे अवैध स्वरूप का जो अवैध महिमा है उसमें जो आत्म रस आता है उसमें जो चैतन्य का शांत रस आता है उसमें जो परम अमृतमयी शांति अनुभव में आती है कैसे अमृत जैसे उसमें उस आत्मा का भेद विकल्प है वो भी रस भंग करता है क्या करता है चैतन्य की शांति को रस को खोलता है इसलिए वो पोसाता नहीं है। तो आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि नायक आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद विद्यमान है ऐसा नहीं कहा वो तीनों ही विद्यमान नहीं है जाओ दर्शन ज्ञान चारित्र ही विद्यमान नहीं है फिर इसकी चर्चा क्यों क्योंकि इसकी भेद रूप विद्यमानता हमें अनुभव में नहीं आती और ये अभेद अनुभव में ऐसा पारमार्थिक ज्ञान हो जाता है ऐसा पारमार्थिक ज्ञान हो जाता है अभेद अनुभव शास्त्र में जो कहे हुए भेद है वो तो बिना पढ़े उसे ज्ञान में आ जाता है उसके लब्ध ज्ञान में आ जाता है उसको कहते हैं लब्धि क्या कहते हैं उसको लब्धि कहते हैं तो कभी उपयोग होता है लब्ध में से उपयोग होता है सामान्यतया तो उपयोग का लब्ध होता है विशेष रूप से लब्ध का उपयोग होता है देखो क्या परिणाम का प्रकार है गुरुदेव को कहते हैं कि प्रमद स्थान में नंबर याद नहीं है कि जो 12 अंग का धारी मुनिराज आचार्य को ज्ञानी होता है ऐसा तगड़ा सूक्ष्म 12 अंग का ज्ञान जिसको हो ऐसा ऐसा न्याय समय दृष्टि चतुर्थ स्थान वाला का निकाल सकता है कहां से आत्मा में तो इसका सबूत है समय सार समय सार में बाबा पंडित जयचंद्र जी का लिखा हुआ फिर सातवें गाथा का भाव अर्थ, ग्यारहवें गाथा का भाव अर्थ, निद्रा अभिकार का पिछु का पूरा सारांश जो सोमवार लिखा है भावार्थ में, ऐसे ऐसे न्याय निकाला है जो आचार्य से नहीं निकाला है, वो इसमें निकाला है। और भलसीदास ने भी नाटक समय सार में जो मूल समय सार में कितने न्याय नहीं है ऐसे न्याय निकाले हैं, नाटक समय सार में ऐसे पद रचना किया है। आचार्य से ज्यादा है ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन आचार्य को विकल्प नहीं आया और ज्ञानी को विकल्प आया, दो बात और बता दी। ने उसको प्रवचन किया तो सैकड़ों न्याय और नहीं निकाले, एक एक गाथा में निकाले के नहीं निकाले। कहते थे कि आचार्य श्री का जो ज्ञान है वो तो आचार्य जो का ज्ञान के आगे मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा ज्ञान तो बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, मेरी तो पहुंच ही नहीं है। फिर भी बात दस पूरी करते थे, सौ पूरी करते थे। इसका मतलब क्या? बारहवें को जो ज्ञान होता है इसका न्याय ऐसा न्याय सभी कुछ निकाल सकता है। और शास्त्रों ने तो यही कहा कि जिसको अपना आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ, जिस आत्मस्वरूप में केवल ज्ञान से अनंत गुणा ज्ञान सामर्थ्य का समृद्ध ज्ञान गुण पड़ा है, समृद्ध ज्ञान गुण पड़ा है, ऐसा जो स्वरूप का अनुभव किया उसको तो केवल ज्ञान की लब्धि मिल गई, उसको केवल ज्ञान की लब्धि प्राप्त हो गई है, उसका केवल ज्ञान हो जाएगा, लब्धि में आया है उपयोग हो जाएगा बाद में। इसलिए ग्रंथ ग्रंथों में ज्ञानियों की सम्यक दृष्टि की महिमा करने में आई है, इसका यही कारण। ये तो अस्थि से लेते हैं, नास्ति से अगर समझे तो आठ कर्म है, कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य आठ, तेमा मुख्य वो नहीं हना इसे तो उपाय। तो अनंत प्रकार में आठ कर्म नो मुख्य छे, आठ मा वो नहीं मुख्य छे, वो नहीं मा दस वो नहीं मुख्य छे। तो अनंत कर्म का जो लश्कर है, सेना है, कर्मों की जो सेना है उसमें अनंत कर्म है, उसका राजा कौन? दर्शन भोगी कर्म। और चतुर्थ स्थान पे किसको मारा? राजा को मारा है। चतुर्थ स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि ने किसको मारा? के राजा को मारा है। तो जो सेना है वो भगने लगी है, सेना तो बेचारी, अरे राजा ने मारा हमारे को, हमारा क्या बूता है लड़ाई करने का? इसने राजा को मार दिया तो सैनिक को लड़ाई करने की क्या बुता होती, क्या कौन सी बुता होती? वो तो क्या गया भागने लगे, सब भगने लग गए। तो इस मार्ग की, जिन मार्ग की सुंदरता यह है कि प्रारंभ में सबसे बड़ा काम होता है, पहले चरण में संसार का अभाव का शुरुआत बहुत जोर से होती है, तो दर्शन को मरता है, दर्शन को मर गया अब किसी की ताकत नहीं है कि वो सभी दृष्टि को हरा दे। इसलिए ग्रंथ ग्रंथों में ज्ञानियों ने, मुनियों ने, सर्वज्ञों ने कुछ चतुर्थ स्थान की भी महिमा करने का यही कारण है। तो जगत की शुद्धि वहां मोक्ष मार्ग की जगन में शुद्धि है, फिर भी इसकी महिमा बहुत बहुत क्यों किया है? इसके कुछ पहलू ऐसे हैं। 148 प्रकृति है मुख्य, एक जो आठ प्रकृति के पिता बहनती है 148, 148 में 27 प्रकृति को सम्यक दृष्टि को बोलती है, विचार दृष्टि को तो इसका अनुभव होता ही नहीं। जैसा सिद्धि का देव होता है या सुधर्म इंद्र होता है, ऐसा कोई जो कुछ होता है तो हमें दृष्टिकोण होता है, मीठा दृष्टिकोण दुख नहीं होता है। तो मीठा दृष्टिकोण अनुभव होने वाली 121 पुस्तकें रही। 121 में से जब सम्यक दर्शन होता है तो करुणानंद किस प्रकार से रस लेने की चीज है, 81 प्रकृति का विच्छेद होता है, कितना 41 प्रकृति बाकी रहती है, नाम पर मुझे बहुत सी प्रकृतियां हो सकती है। तो उतना बड़ा काम प्रारंभ में होता है, दर्शन में तो जाता है लेकिन पेटा प्रकृति भी बहुभाग चली जाती है, विच्छेद हो जाती है, इसका बंद नहीं होता, बंद का विच्छेद हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने काम कम उसकी महिमा उसको दिनेश्वर का लघुबंधन बोला है, क्या बोला उसका शांत दशा पे पहचान जगत माही दिनेश्वर के लघु बंधन। तो समय साल में तो काम काम उसकी महिमा आई है, समय साल में भी काम काम उसकी महिमा आई है। 15वीं गाथा में बोला में ये अनुभूति समस्त दिन शासन की अनुभूति, ये शासन संभव समस्त दिन शासन की अनुभूति बोला है। समस्त दिन शासन क्या से हो गया, तो दोरा दिन शासन से ही हुआ क्या, कि नहीं ये अनुभूति है समस्त दिन शासन। मैं अपने संचय अधिकार में अवैध महिमा जिसको आती है, ऐसा मैं हूं कि जिस मुझे मेरी अवैध महिमा आती है, वेद वाली महिमा नहीं है, बात नहीं मान वो बात नहीं की यहाँ। ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं, तो अनुभव कैसे हुआ, सर्वमपि जीतवा, जितनी कर्म के उदय की उपाधि है उसको अनादि काल से आपा जानकर अनुभवता था, तो पौत्रीय जानकर स्वामी को छोड़ दिया, उपना कर दिया, जो अपना नहीं था उसमें अपनत्व कर लिया था तो अपनत्व छोड़ दिया, बात खत्म, उतना ही काम किया है, ज्यादा कोई लंबी थोड़ी बात नहीं, कोई मुश्किली वाली बात नहीं है। जितनी कर्म के उदय की उपाधि है, उपाधि कहाँ से होती है, नमक तो होती है, उदय तो होती है, जिसको अपना कम नहीं उसको उपाधि भी नहीं। संसार में भी एक कहावत है, सत्ता और उपाधि एक साथ रहती है, एक सिक्का के दो बाजू की तरह। जैसे घर में हम बड़े हैं, मुख्य हैं, तो फिर सत्ता भी हमारी चलनी चाहिए ना, हम बड़े और छोटे वाले की सत्ता चले कि दो बात ठीक है क्या है, बाप बैठा और लड़के की चले बाप की नहीं चले वो बात ठीक है क्या है? वो तो भी तुमको तुम्हारी चलानी हो तो साथ साथ उपाधि भी करनी पड़ेगी। सत्ता चलानी है और उपाधि नहीं करनी है वो बात करने वाली नहीं है, देख लेना अपना अनुभव से, तो उसको तो उपाधि होगी होगी और होगी ही। इसलिए बड़ों को चाहिए कि अपनी सत्ता चलावे नहीं, थोड़ा कड़वा घुटड़ा है कहीं उपाधि रहित होना है कि उपाधि सहित रहना है, वही उसकी बात है, पहले से छोड़ देना। जितनी कर्म के उदय की उपाधि है उसको अनादि काल से आपा जानकर अनुभवता था, तो परद्रव्य जानकर स्वामी को छोड़ दिया, तो स्वामित्व रखने से क्या है, स्वग्रह का या संयोग का कर्म से उदय का स्वामित्व रखने से क्या करता है कि जीव को रोना पड़ता है कि ऐसा हुआ हमें वैसा हुआ। क्यों, विकल्प तो हजार होते हैं पर सभी विकल्प के अनुसार से चाप तो बनते नहीं, तो फिर क्या होता है ये ऐसा हुआ वो कैसा हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा हुआ, वो ऐसा होना चाहिए तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसका जो रोना है वो चालू रहेगा, क्यों सबों को अपनी प्रतिकूलता का रोना आएगा, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा हो गया, उसका रोना कभी बंद होने वाला नहीं। तो स्वामी तो सो रहे तो कोई आपत्ति नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ बस, कितना या तो ज्ञान मात्र हूँ, चैतन्य मात्र में हूँ बस, उतना ले लो, सिद्धांत सेवन करने योग्य है, ऐसा कलश आएगा, यही सिद्धांत सेवन करने के चैतन्य मात्र में हो और कुछ नहीं है। उसका स्वामित्व जिसने छोड़ दिया, उस स्वामित्व छोड़ने से अनुभव आता है, हम संयोग पर कर्म के उदय पर हमारा स्वामित्व रखे, मेरा उदय मेरा उदय मेरा उदय मेरा उदय पर हमें अनुभव हो वो बात बनने वाली। इसमें प्रश्न ऐसा उठाया कि ऐसा निर्विकल्प अनुभव जिस प्रकार होता है किस प्रकार होता है, कि जो स्वामित्व छोड़ता है उस प्रकार होता है, स्वामित्व छोड़ने वाले को होता है, स्वामित्व रखने वाले को नहीं होता है। कैसा है परद्रव्यू वेतुम शक्य थे, जो कर्म रूप परद्रव्य वस्तु है जीव से भिन्न करने को शक्य है, अर्थात दूर किया जा सकता है, इसका स्वामी को छोड़ जाए छोड़ सकते हैं, अनंतों ने छोड़ा
गगन ज्ञान चारित्र का प्रांत तो नहीं छोड़ सकते, इसका छोड़ सकते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वामित्व तो नहीं छोड़ सकते, इसका स्वामित्व छोड़ सकते हैं,
दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद का विकल्प का स्वामित्व छोड़ देना, और दर्शन ज्ञान चारित्र से अभेद अपना स्वरूप है उसका तो स्वामी है ही, उसमें छोड़ने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, छोड़ा ही नहीं जा सकता, वो तो हमारा स्वरूप है, उसको छोड़ने का सवाल नहीं। लेकिन ये मकान मेरा, कुटुंब मेरा, फलाना मेरा, फलाना मेरा, ये मेरा मेरा, ये मारा है, मेरा नहीं है, लेकिन यही जीव को मारने वाला मारा है, सुन करने वाले को मारा कहते हैं ना, ये मारा है, आत्मा का सुन करने वाला है, आत्मा शांति का सुन करता है,
मिथ्या तो
है,
मिथ्या तो है,
मिथ्या तो है, ज्ञान है, और अनंत प्रकार के दुख को उत्पन्न करने वाला दुखदायक है और कुछ नहीं है, दुखदायक है, चीज अपनी जगह है, चीज को छोड़ना ग्रहण करने की बात नहीं है, अपने तो अस्तित्व नहीं है तेरा, अपने को क्यों करता है, जब तेरी मौजूदगी नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस वहां है ही नहीं, फिर माँ अपने को कैसे करते हो, ये तो भूल करते हो, इसकी शिक्षा मिलेगी, इसका दंड मिलेगा, सीधी साधी बात है। ये विकराग देव का कानून है, सर्वज्ञ परमात्मा का कानून है कि जो अपना नहीं है उसमें अपनत्व करने वाले को उसका दंड भुगतना पड़ता है, कानून तोड़ता है, शिक्षा मिलती है, आकुलता होती है, दुख होता है, वहां एक तकलीफ हुआ है, आप नहीं बोलोगे मैं बता दूंगा। ऐसा अपने को छोड़ देते हैं कि हमारे जो फीलिंग है वो खत्म हो जाती है, तो क्या हम लागणी शून्य हो जाए क्या? हिंदी में क्या लागणी बोलते हैं? तो उसको अपनत्व में वो क्या लगाव, लगाव कहते हैं, क्या हम लगाव शून्य हो जाए क्या? किसी के प्रति हमारा लगाव नहीं रहे तो जीवन को ठीक है क्या, सही है क्या? और अगर हम लगाव के शून्य हो जाएंगे तो फिर साथ में जीवन जीने का रस भी कहा रहा, हमारा जीवन जीने का रस खत्म हो जाए तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? ये सब बातें, ये सब विकल्प डराते हैं, क्या करते हैं, जीवन को डराते हैं।
तो भिन्न ही है, ये तो भिन्न ही है,
भिन्न ही है,
इसलिए शक्य है इनको छोड़ना, इनको छोड़ देना शक्य है, अशक्य नहीं है।
छोड़ने का शक्य है पर पहले लगाव तो छोड़े, लगाव नहीं छोड़ता है, कैसे भाग में तो छोड़ना है, तो अनंत बार छोड़ा है, दीक्षा ले लिया है बहुत बार, कुटुंब परिवार को छोड़ कर, लेकिन गया जंगल में और स्मरण आया घर का, जंगल में चले जाने के बाद क्या होगा, घर का स्मरण आ जाएगा, पहले अंदर से लगाओ तो सुखे, फिर कोई बात नहीं है, फिर तो सोना आसान है, छुपा ही पड़ा है। कोई गोविंद राम जी का पद है, अपने सुन को भूल आप दुख उपायो, जो सुख न हो चाल दूसरी बलि भी न पाए, गुनगुनाते हैं जो सोता होता है सोपक सुख, तो अपने सुख में गगन विहार करने की उड़ने की शक्ति को भूल जाता है, तो नलिनी मैंने घूमने में वो लटक जाता है, उल्टा हो जाता है और उसका शिकार हो जाता है, वो जिंदा पकड़ा जाता है और पिंजर में उसको रख देते हैं, क्योंकि वो नवजात को विसर गया है, ऐसे उसने अपने आप को दुख उपाया, दुख का उपाय किया, वैसे हमारे मुक्त हो रहकर जिंदा होने की शक्ति है, किसी से भी लगाव नहीं रहे तो भी हमारा आनंद रस, हमारा शांत रस, सुख रस, चैतन्य रस, अमृत रस हमको हमको वैसे नहीं रहने वाला, हमारा जीवन बेकार होने वाला नहीं है, लेकिन अपनी शुद्ध भूल आप दुख उपाय, अपना जो सुख है उसको भूल गया, कभी हमारे सामर्थ्य को ताकत को भूले तो उनको लगता है कि इसके बिना कैसे जीते रहेंगे, इसके बिना कैसे रहेंगे, इसके बिना कैसे रहेंगे, तो हमारा दिन पड़ा है, आधार बुद्धि है, सुख बुद्धि है, कोई हमको आनंद रूप में ले जाती है। तो कहते हैं कि वो तुम शक्य है, शक्य है, उसको भिन्न करना अनुभव में लेना वो शक्य है, अशक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु भिन्न है, भिन्न को भिन्न जाने, भिन्न को भिन्न अनुभव करे तो उपाधि मिल जाएगी, उपाधि मिल जाएगी तो दुख मिल जाएगा, अपनापन है वहाँ उपाधि है, वहाँ भय है वहाँ सभी प्रकार के दुख है, जहाँ अपनापन छूटा भय भी नहीं दुख भी नहीं, यहाँ तक।